मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एफईआईएस के आज 17 मार्च 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों लगातार आप मुझे डेली ऑडियो लेक्चर के अंतर्गत सुनते आ रहे हैं और उसके तहत आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं कि मैं खासकर करेंट अफेयर्स पर आप सबसे बातें करता हूं और उन करेंट अफेयर्स में जो एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है उसे मुख्य विषय के रूप में रखकर उस पर मैं अपेक्षाकृत थोड़े विस्तार से बातें करता हूं। यह मेरा एक प्रकार का रूटीन है जो लंबे समय से आप सुनते आ रहे हैं और सच पूछे तो इस बिंदु पर पहुंच करके मुझे कभी कभी ये लगता भी है कि खासकर आप लोगों में से वे स्टूडेंट जो 6 महीने से कम लगातार मुझे सुन रहे हैं उनके मस्तिष्क में कहीं न कहीं यह स्पष्टता आ गई होगी कि उनके सामने इतने सारी न्यूज आती हैं अखबार के रूप में, रेडियो न्यूज के रूप में, चैनल्स के रूप में, दूरदर्शन समाचार के रूप में, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो जान ही चुके होंगे कि इनमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा लेस इम्पॉर्टेंट है और कौन सा बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है। और सच पूछिए तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि जो आपका चयन है वो कितना परफेक्ट है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि बहुत से लोग जो ये बात कहते हैं कि आकाश के नीचे जो कुछ भी हो रहा है उनमें से कुछ भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, दोस्तों ऐसा नहीं है। आप देखिए कि यूपीएससी है बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि जो एग्जाम में बैठने वाला स्टूडेंट है उसने ये न्यूनतम योग्यता तो आपकी ग्रेजुएशन ही कर रखी है और जो न्यूनतम आपकी एज भी है वो 21 साल की है। तो अब ये बताइए कि जिस स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन किया हुआ हो और जिसकी एज 21 ईयर्स की हो वो कैसे आकाश के नीचे जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन सब के बारे में जान पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी कोई आपके दुश्मन है, आपसे कोई बदला लेना चाहती है। हाँ, आपका वो परीक्षण जरूर करना चाहती है कि प्रशासक की दृष्टि से जो उसका व्यक्तित्व होना चाहिए, जो उसकी सोच समझ होनी चाहिए, मस्तिष्क का जो स्वरूप होना चाहिए वो है या नहीं, और उसी के लिए उसने इस 3 चरण के एग्जाम का प्रावधान किया हुआ है। तो डेफिनेटली जब इतनी सारी घटनाएं घटित हो रही हैं तो उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप छांट सकें कि कौन से आपके काम की है, कौन से काम की नहीं है, क्योंकि इन सबको तो लेकर के आप चल ही नहीं सकते, कोई भी नहीं चल सकता, क्योंकि हम सबके दिमाग की अंततः एक कैपेसिटी तो है ही। तो मुझे कभी कभी ये लगता है और जब मैं आप सबसे व्यक्तिगत रूप से कभी मेरी मुलाकात भी होती है तो मेरा लगता है थोड़ा सा यूं कह लीजिए कि यकीन में भी तब्दील हो जाता है कि नहीं, आप में इस तरह की जो समझ है वो डेवलप हो रही है। डेफिनेटली इसका कोई अंत नहीं है, आप जितना सुनते चले जाएंगे, जितनी तैयारी करते चले जाएंगे उतने आप मैच्योर होते चले जाएंगे और आपके अंदर चयन की, सटीक चयन की कहना चाहिए, क्षमताएं उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाएंगी। ये तो मेरी बात का एक पक्ष हुआ। अब मैं आता हूं अपने दूसरे पक्ष पर। जो मेरा दूसरा पक्ष है फ्रेंड्स कि अब आपकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के हार्डली 2.5 महीने रह गए हैं। हार्डली 2.5 महीने। देखिए एग्जामिनेशन इतना टफ है, प्री एग्जामिनेशन आप कह लीजिए कि चलिए हम आम तौर पर मान लेते हैं कि एप्लीकेशन चाहे कितने भी लोगों ने भरी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इससे जरूर फर्क पड़ता है कि कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं। तो चलिए जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसमें हम मान लेते हैं कि 4.5 लाख स्टूडेंट बैठेंगे, 4.5 से 5 लाख के बीच में स्टूडेंट प्री में बैठेंगे और उसमें फिर हम ये मान लेते हैं कि लगभग 10,000 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। 10,000 स्टूडेंट। अब आप देखिए कि मार्क्स केवल 200 हैं, यानी कि जो जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर है उसी के आधार पर सिलेक्शन होना है। जो सी सेट का पेपर है वो तो महज क्वालिफाइड पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है। तो अब आप सोच करके देखिए कि केवल 200 मार्क्स का एक पेपर है और उसमें 10,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना है, तो जो सिलेक्शन का की जो टसल होगी, जिसको कहते हैं नेक टू नेक फाइट, मतलब कंधे से कंधा रगड़ते हुए आप एक दूसरे को आगे छोड़ रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, 0.01% मार्क्स भी कितना ज्यादा मायने रखता होगा आप इमेजिन कर सकते हैं और करना ही चाहिए। यानी कि जब हम भले ही उसका कट ऑफ मार्क्स आपको 50% 52% 55% ये सब पढ़ने को मिलता है और वो सच भी है, लेकिन इसके बीच में जो कॉम्पिटिशन है, वो बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है। सच पूछे तो कभी कभी तो वो डरते हैं, तैयारी करते रहते हैं, तो वो डरावनापन खत्म भी हो जाता है, क्योंकि जो परिणाम सामने आते हैं उसमें सीधी सी बात है कि अगर हमने तैयारी की थी तो परिणाम बेहतर आ जाते हैं, और तैयारी नहीं की थी तो फिर हम बाहर हो जाए। पछताने के लिए मैं ये सोचता रहूं कि अरे मैं 0.1% के लिए चूक गया, लेकिन चूक गया सो चूक गया। लेकिन ऐसा क्या कुछ हो सकता है कि हमारा ये पछतावा न हो, पछतावा कम से कम हो जाए? क्या उपाय है, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? तो सच पूछिए तो जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो फिर मेरे दिमाग में एक नई बात आई। हालांकि ये टोटल बिल्कुल मैं इससे पहले भी कर चुका हूं, और नई बात यह आई कि क्यों नहीं अब कुछ दिनों तक, एटलीस्ट 2 वीक कह लीजिए, एक ही सब्जेक्ट को लिया जाए और उसी की जाए, और बातें कुछ इस अंदाज में की जाएं। दो अंदाज इंपॉर्टेंट हो बातों का। पहला तो यह है कि वो ये जान सकें स्टूडेंट, मेरे जो प्रिय श्रोता हैं, कि किस चाहिए, या यूं कह लीजिए कि समझना कैसे चाहिए। और दूसरा यह कि उन्हें मैं कुछ इसी माध्यम से कुछ ऐसे तथ्य उपलब्ध करा सकूं जिनके एग्जामिनेशन में है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी अधिक है, और यदि मेरे इस दिन 10-12 दिन की कोशिश आप अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन चूंकि आपने मेरा डेली ऑडियो लेक्चर सुना तो वह आपका सॉल्व हो गया कि स्कोर में 1% का इजाफा हो जाता है। देखिए अगर आप वैसे सुनेंगे 1% का इजाफा हो गया या 2 मार्क्स ज्यादा मिल गए तो आपको लगेगा कि यार इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई। लेकिन इसीलिए शुरू में इसके महत्व को समझाने के लिए, स्थापित करने के लिए मैंने ये बात बताई कि कैसे जो कंपटीशन होता है वो 0.1% तक का होता है, और मैं तो 1% 2.5 महीने ही एग्जाम के बच गए हैं, तो मैं एकदम एग्जाम के करीब जाकर के कुछ ऐसी बातें बताऊं तो शायद वह उतना न्यायपूर्ण नहीं होगा। बेहतर होगा कि उससे पहले ही मैं कुछ इस तरह के विषय को चुन लूं और अपनी बात कहना शुरू कर दूं, ताकि आप इसका लंबा फायदा उठा सकें। कि जैसा कि मैंने कहा कि आप कैसे किसी टॉपिक को पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे उसमें से मुख्य तथ्य निकालेंगे, तो यदि आप इसे थोड़ा सा भी समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आपकी जो पढ़ाई का या प्रिपरेशन का जो तरीका है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप उसे बदलना चाहें, और वही थोड़ा बहुत बदलाव आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला दे, उसमें से थोड़ा गायब हो जाए, बड़ा बदलाव आ जाए। और यह भी हो सकता है कि जो मैं बातें करूं तो सीधे सीधे ही उसमें से आपको 1-2% मार्क्स बढ़ जाएं। तो इसी बात को ध्यान में रख करके फिर मैंने एक फैसला किया है, और मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय को आप सब सराहेंगे। मैंने निर्णय ये लिया कि जब मैं पूरा का पूरा चार्ट देख रहा था कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 4 सब्जेक्ट तो आपको मालूम है जिन्हें मैं 4 पिलर्स ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहता हूं, उन चारों को जब हम मिला देते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इन सबको मिला देते हैं तो लगभग 65-70% क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग काफी बातें कर चुके हैं, लेकिन इसी में एक और सब्जेक्ट है और वह है पर्यावरण, एनवायरमेंट। मुझे ऐसा लगा कि अगर एनवायरमेंट पर बात की जाए तो अपेक्षाकृत वह आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। एनवायरमेंट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 सालों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 8-10 क्वेश्चन, 8-10 प्रश्न, और मुझे लगता है कि परसेंटेज की दृष्टि से ये काफी बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में अब जो मैंने फैसला किया है मित्रों, वो ये कि मैं कुछ दिनों तक आप सबसे पर्यावरण के बारे में बात करूंगा, पर्यावरण, एनवायरमेंट। लेकिन अब आप देखिए कि मेरी भी अपनी सीमा है, सीमा ये है कि रोजाने के वक्त की सीमा है कि डेली मुझे इतने मिनट का डेली ऑडियो आपको प्रोवाइड करना है, जो लगभग 12-13 मिनट्स का होता है। जब मैं उस तरह से प्रोवाइड करता हूं डेली ऑडियो लेक्चर के रूप में, जिसमें मैं करंट अफेयर्स वगैरह लेकर के चलता हूं, तो देखिए कभी कभी करंट अफेयर्स की इतने ज्यादा घटनाएं आ जाती हैं कि वो वक्त थोड़ा सा बढ़ जाता है। अदरवाइज जो इसका आइडियल टाइम मैंने अपने दिमाग में बना रखा है वो है 12-13 मिनट्स। अब देखिए मैं डेली 12-13 मिनट्स आपसे बातें करूंगा, और वो भी 10-12 दिन तक बातें करूंगा, तो स्वाभाविक है कि एनवायरमेंट पूरा तो कवर नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं है। और अगर मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा तो सच पूछिए तो मैं आपके साथ न्याय नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप जल्दबाजी में अगर मैं करूंगा भी तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, यूं कह लीजिए कि आपके काम का कुछ भी नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जैसे ट्रेन अगर बहुत रफ्तार से गुजर रही हो, चल रही हो, और आप ट्रेन की खिड़की से झांकते हुए बाहर की चीजों को पहचानना चाहेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो गति है वो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से किसी भी दृश्य की इमेज बनने नहीं देगी, तो यह स्थिति होगी। तो फिर मैं क्या करूं, तो फिर से एक सवाल आया, तो फिर एक निर्णय मेरे सामने आया फ्रेंड्स, या कह लीजिए विकल्प आया कि क्यों नहीं पर्यावरण के बायोडाइवर्सिटी पर बात की जाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं फिर पर्यावरण पर पूछे गए प्रश्नों का जायजा लेने लगा तो मुझे लगा कि जो 8-10 क्वेश्चन पर्यावरण पर पूछे जा रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो संख्या है, या सबसे ज्यादा न भी कहें तो हर साल जो पूछा ही गया है, वो बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, आप कह लीजिए कि एनवायरमेंट के विषय। तो दोस्तों फिर अब ये फाइनल निर्णय मैंने लिया है कि मैं अब आपसे कुछ दिनों तक डेली बायोडाइवर्सिटी के बारे में बातें करूंगा, लेकिन बहुत ही बेसिक बातें और बहुत ही शुरुआत की बातें। और ऐसा इसलिए कि बिना बेसिक और शुरुआत को जाने सही मायने में आप किसी भी विषय को बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते हैं, विषय को पकड़ नहीं सकते हैं। और अगर आप शुरू को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आगे के जो उससे रिलेटेड टॉपिक होंगे वे आपके लिए आसान हो जाते हैं और उन पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ भी बन जाती है। तो मित्रों अब आने वाले दिनों में मैं बायोडाइवर्सिटी पर आप सबसे कुछ बातें करूंगा और मुझे यकीन है कि मेरे इस विषय को आपका उसी तरह से स्नेह मिलेगा जिस तरह से मेरे डेली ऑडियो लेक्चर को आपका स्नेह मिलता रहा है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस तरह के प्रयोग मैंने इससे पहले भी किए हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पर किए हैं और भी जो दूसरे टॉपिक्स हैं उन पर किए हैं और आप लोगों ने इसे बहुत सराहा है, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स ने तो यहां तक कहा कि सर इस तरह के आप हर 1-2 महीने में कर दिया कीजिए, तो वो भी मेरे दिमाग में दर्ज है। तो उन्हीं सब बातों का ध्यान में रखते हुए अब मैंने ये थोड़ा सा एक अलग किस्म का निर्णय लिया है और जैसे ही 10-12 दिन ये पूरे होंगे इसके बाद फिर से हम लोग अपने पुराने मोड में आ जाएंगे। डेली ऑडियो लेक्चर का जो मूलभूत चरित्र है उसी अनुसार फिर आपको डेली ऑडियो लेक्चर मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। तो मित्रों आज के डेली ऑडियो लेक्चर के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। और अब इसी के साथ ही दोस्तों मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।